नमस्कार, सुनो कहानी कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है अनुराग शर्मा की कहानी सौभाग्य। आवाजें हैं डॉक्टर मृदुल कीर्ति और अनुराग शर्मा की।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग, लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग में अपनी बात अपनी भाषा में।
कब से बिस्तर पर लेते हुए मैं सिर्फ करवटें बदल रही थी। नींद तो मानो कोसों दूर थी। करिश्मा को सोते हुए देखा, कितनी प्यारी लग रही थी। इतने जालिम बाप की इतनी प्यारी बच्ची, सचमुच कुदरत का करिश्मा है। इसीलिए मैंने इसका यह नाम रखा। इसके बाप का बस चलता तो कोई पुराने जमाने का बहनजी जैसा नाम ही रख देते। सारी उम्र जिल्लत सहनी पड़ती मेरी बच्ची को। खुद मैं भी तो रोज एक नरक से गुजरती हूँ। कितना भी भुलाना चाहूं, हर रात को दिन भर की तर्क बातें याद आती रहती हैं। आज ही की बात लो, कितनी छोटी सी बात पर कितना उखड़ गए थे।
टिकट बुक कराया?
हाँ।
तुमने तो 8,500 कहा था, अभी 12,500 कहाँ से हो गए? और ये सप्ताह के बीच में इतवार का टिकट क्यों नहीं लिया? 4 दिन का नुकसान करा दिया। 4 दिन की कीमत पता है तुम्हें?
इतना ही ख्याल है तो खुद क्यों नहीं कर लिया। माना मैं पूरे हफ्ते से छुट्टी पर हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि एक नौकरानी की तरह इस आदमी का हर काम मैं ही करती रहूं। अपने मायके में तो मैंने कभी खाना भी नहीं बनाया। हर काम के लिए नौकर जाकर थे, उनको तो ये भी पसंद नहीं। कितनी बार ताना देकर कहते हैं कि रिश्वत की शान शौकत के सामने तो मैं भूखा रहना ही पसंद करूंगा। तो रहो भूखे, मुझे और मेरे बच्चों को तो हमारा पूरा हक दो, उसके बाद जो चाहे करो। मैंने क्या क्या कहना चाहा, मगर पिछले कड़वे अनुभवों के कारण मन मारकर चुप ही रही। सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह उठी तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। आखिरी छुट्टी भी आज खत्म हो गई। पैर पटक कर दफ्तर के लिए निकलना ही पड़ा। हमेशा ऐसा ही होता है, जबरदस्ती करके अपने को उठाती हूँ तब भी बस छूट जाती है। आखिरकार टैक्सी करनी पड़ी, और ये दिल्ली के टैक्सी वाले, ये तो लगता है माँ के पेट से ही गुंडे बनकर पैदा हुए थे। कोई लाज लिहाज नहीं, अकेली औरत देखकर तो कुछ ज्यादा ही इतराने लगते हैं। दफ्तर पहुँचते पहुँचते 10:30 बज ही गए थे। चीफ मैनेजर दरवाजे पर ही खड़ा था। बुढ़े को कोई और काम तो है नहीं, बीच में खड़ा होकर सुकुमार कन्याओं को ताकता रहता है। मुझे देखते ही अजब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नाचने लगी। घिन आती है मुझे उसकी मुस्कुराहट से। न मुंह में दांत, न पेट में आंत, खिजाब लगाकर कामदेव बनने की कोशिश करता है। सींग काटते से बैल बछड़ा थोड़े ही हो जाएगा।
तो आ गई आप, मुझे लगा छुट्टी पर है आज भी।
बुड्ढे ने हमेशा की तरह ताना मारा, बदतमीज कहीं का। फ्यूचर टेक वाला जैन मेरे पहुंचने के पहले ही मेरी सीट पर पहुंच गया।
मैडम, मेरी बिल पहले डिस्काउंट कर दीजिए, नहीं तो पार्टी कानूनी कार्रवाई शुरू कर देगी। मैडम, मुश्किल हो जाएगी बहुत, आपको भी हमें भी।
ये आदमी हमेशा कानूनी कार्यवाही की ही धमकी देता रहता है। इतना ही डर है तो अकाउंट में पहले से पैसा रखा करो ना। सबने सर पर चढ़ा रखा है मंत्री जी का साला जो ठहरा। सारे अकाउंट ऊपर से ही तैयार होकर आते हैं, हमारे पास तो साइन करने के अलावा कोई चारा होता ही नहीं। जल्दी जल्दी उसका काम किया, दोपहर तक फ्यूचर टेक का खाता फिर से ओवर हो गया। लंच करने बैठी तो पहले ही कौर में दांत के नीचे कंकड़ आ गया। खाने का सारा मजा किरकिरा हो गया। तब तक राम बाबू आ गया, ये हमारा चपरासी है, चीफ मैनेजर से कम बदतमीज नहीं है, उससे कम समझता भी नहीं है अपने को, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई की कसर फैशनेबल कपड़ों से पूरी करने की कोशिश में लगा रहता है। है तो चपरासी ही, और शायद सारी उम्र चपरासी ही रहे, लेकिन खूबसूरती में अपने को ऋतिक रोशन से ज्यादा सुंदर समझता है। हमेशा कुछ न कुछ कमेंट करता रहेगा। मेरी तरफ बढ़ा, तभी मैं समझ गई कि कुछ बकवास करने वाला है, और ठीक वही हुआ। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला।
मैडम, आप ना जीन्स में बहुत अच्छी लगती हैं। रोजाना जीन्स पहन के आया करिए, एकदम टिप टॉप लगेंगी। हाँ।
मुझे इतना गुस्सा आया कि उसी वक्त खाने की प्लेट छोड़कर उठ खड़ी हुई। वापस अपनी सीट पर आई ही थी कि फोन घनघनाया।
हेलो, क्या प्रीति मैडम से बात कर सकता हूँ?
पूरे दिन में पहली बार किसी ने इतनी सभ्यता से बात की थी, अच्छा लगा। आवाज भी अच्छी लगी, कुछ हद तक जानी पहचानी भी लगी।
मैडम, आपसे एक जानकारी चाहिए थी।
हाँ पूछिए। पूरे दिन में अब मैं पहली बार सामान्य होने लगी थी।
क्या आप किसी आदित्य रंजन को जानती हैं?
उस सभ्य आवाज ने आदित्य कहा तो मेरा सारा शरीर एक बार की पुलकित सा हो गया। ये नाम सुनने को मेरे कान तरस रहे थे और मेरे होठ भी पिछले 10 सालों में कितनी बार अस्फुट स्वरों में यह नाम बोलते रहते थे। वही गंभीर स्वर, वही मिठास और वही शालीनता। मुझे ये पहचानने में एक पल भी नहीं लगा कि यह आदित्य ही है। बदमाश, कहाँ हो तुम? बस यही वाक्य ठीक से निकला, गला कांपने लगा था। कहाँ खो गए थे तुम? पता भी है मैं किस हाल में हूँ, कितनी अकेली और उदास हूँ। कहते कहते मेरी रुलाई फूट पड़ी।
एक जरूरी काम से मुख्यालय आया था, पुरानी यादें ढूंढने कनॉट प्लेस आया तो अरविंद मिल गया। उससे तुम्हारा सारा हाल मिला, उसी ने तुम्हारा नंबर दिया, बताया कि तुम्हारी ब्रांच नजदीक ही है। सुनो प्लीज, रो मत, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ।
उसे आज भी मेरा इतना ख्याल है, ये जानकर अच्छा लगा। वो आज भी उतना ही भला था, उसकी आवाज में आज भी वही शांति थी जिसे मैं अब तक मिस करती रही थी। फोन पर उसकी आवाज क्या सुनी, मानो मैं किसी टाइम मशीन में चली गई। अपने जीवन में से कितनी भूली बिसरी पुरानी यादें जैसे अब तक जबरन बंद कर रखी थी, खिड़कियों से उड़कर मेरे मन मंदिर में मंडराने लगी। याद आए वो दिन जब हर पल आशा से बंधा था, मुझे हर रोज सुबह होने का इंतजार रहता था ताकि उससे मिल सकूं। उसके संग की खुशबू को बरसों बाद फिर से महसूस किया तो चेहरे पर स्वतः ही मुस्कान आ गई। कॉलेज में वो सबका चहेता था, मैं भी किसी से कम नहीं थी। वो खिलाड़ी था तो मैं पढ़ाकू थी। जान पहचान कब नजदीकी में बदली पता ही न चला। मैं बहुत हाजिर जवाब थी जबकि वो चुप सा था। और भी बहुत से अंतर थे हमारे बीच में, मसलन हम लोग खाते पीते घर से थे जबकि उसका परिवार बड़ी मुश्किल से ही निम्न मध्य वर्ग में गिना जाने लायक था। उसके पास अपनी साइकिल भी नहीं थी जबकि मुझे कॉलेज छोड़ने ड्राइवर आता था। हालांकि बाद में मैंने जिद करके बस से आना जाना शुरू कर दिया था। अब सोचती हूँ तो यह सपने जैसा लगता है कि इतने भेद के बावजूद हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के रंग में रंग गए। मेरी सहेलियां शाम होते ही मुझे अकेला छोड़ देती थी ताकि मैं उसके साथ समय बिता सकूं। सुनैना तो हमेशा ही उसका नाम मेरे साथ जोड़कर कुछ न कुछ झूलबाजी करती रहती थी। कॉलेज में सबको यकीन था कि हम शादी करेंगे ही। हम दोनों करोल बाग में एक छोटे से होटल में बैठे थे। मैं अपने परिवार की एल्बम ले गई थी, वो एक एक फोटो को बड़े ध्यान से देख रहा था। टेढ़े मेढ़े फोटो को एल्बम से निकालकर फिर वापस व्यवस्था से लगा देता। पापा के फोटो को उसने बिना बताए ही पहचान लिया।
ये तो एक प्यारी सी बच्ची के पापा ही हैं।
दिल कर रहा है कि अभी चरण छूकर आशीर्वाद ले लो, है ना? हम दोनों ही खुलकर इतना हंसे कि आसपास की टेबल पर बैठे लोग मुड़कर हमें देखने लगे। मुझसे विदा लेना उसे कभी अच्छा नहीं लगता था, पर उस दिन वो कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा था।
थोड़ी देर और रुक जाओ ना।
आखिरी बस निकल गई तो फिर घर कैसे जाऊंगी?
काश हम लोग साथ रह पाते,
उसने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। भूल जाओ, पापा इस शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, मैंने चुटकी ली। मुझे क्या पता था कि मेरा ये मजाक ही एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बन जाएगा। हम दोनों पार्क में बैठे थे, वो मेरे बालों से खेल रहा था, पता ही न चला कब अंधेरा हो चला था। अचानक ही मुझे पापा का रौद्र रूप याद आया। क्या समय है, मैंने पूछा।
मुझे क्या पता, मैं तो घड़ी नहीं बांधता।
हाँ वो तो दहेज में मिलेगी ही, मैंने छींटा कसी की।
मेरा दहेज में विश्वास नहीं है।
उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। रहने दो, पंडितों को तो बस लेना ही लेना आता है। कहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं ये सोच ही रही थी कि उसकी आवाज से मेरी तंद्रा भंग हुई।
क्या चल रहा है प्रीति जी, सब ठीक तो है? करिश्मा का क्या हाल है? पढ़ाई में तो अपनी माँ की तरह होशियार होगी, राइट?
उसके मुंह से जी सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। शायद मुझे सहज करना चाहता था। मैंने भी संयत दिखने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अपनी सारी शक्ति लगाकर भी मैं उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। गला और आंख दोनों ही भर आए। उसने भी दोबारा नहीं पूछा। उसने अपनी नजरें भी नीची कर ली ताकि मैं चुपचाप छलक आया एक आंसू पहुंच सकूं। मुझे अच्छा लगा, वो आज भी वैसा ही कोमल हृदय है। हमेशा ही दूसरों को पूरा मौका देता है सर्वश्रेष्ठ दिखने का। मेरे उत्तर का इंतजार किए बिना उसने अपने आप ही कहा,
लंच टाइम हो रहा है, सोना रूपा चले, तुम्हें तो पसंद भी है।
हम दोनों जल्दी से बाहर निकले। लंच में मूड खराब हो जाने की वजह से मैं भूखी तो थी ही, मगर उसके साथ होने की बात ही कुछ और थी। मेरे कदम कुछ अधिक ही तेज चल रहे थे। आज बहुत सालों के बाद वो मेरे साथ चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी से पहले हम लोग घूमा करते थे। वो तो स्वभाव से ही निडर था, कभी भी किसी की परवाह नहीं करता था, मगर मुझे तो घर में सबका ही ख्याल रखना पड़ता था। दीदी ने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध घर त्याग कर दूसरी जाति में शादी की थी। एक साल बाद भाई ने भी घर में सबके बहुत मना करने के बाद भी लड़ झगड़ कर एक निम्न कोटि के परिवार में विवाह कर लिया। पापा ने उसी दिन उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और मुझसे वचन ले लिया कि मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। इस बात को बहुत समय हो गया था। पापा ने दीदी और भैया को वापस स्वीकार भी कर लिया था। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, ऊपर से आदित्य का प्यार। मैं तो पापा को दिए इस वचन को पूरी तरह भूल भी गई थी। एक दिन मैंने पापा को आदित्य के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उसी क्षण मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पापा का वो भयानक रूप मैं कभी भूल नहीं सकती। उस समय रात के 11 बज रहे थे। उन्होंने उसी वक्त मुझे घर से निकल जाने को कहा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उन पर तो जैसे भूत सा सवार था। अब याद करके भी आश्चर्य होता है कि हमेशा अपनी शर्तों पर जीने वाले दीदी और भैया भी इस बार पापा की तरफदारी कर रहे थे। दीदी और भैया ने अपनी बातों से मुझे बार बार ये यकीन भी दिलाया कि अपने दोनों बड़े बच्चों द्वारा अपनी मर्जी से विवाह कर लेने की वजह से माँ पापा पहले ही बहुत टूट चुके हैं। अगर मैं भी उनकी इच्छा का ख्याल नहीं करूंगी तो वे लोग गुस्से में न जाने क्या कर बैठे। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो घर का कोई भी सदस्य मुझे माफ नहीं करेगा। पापा के गुस्से के अलावा मुझे एक और बात का भी डर था, वो था हमारी जातियों का। आदित्य एक सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार से था और मुझे कॉलेज में प्रवेश भी आरक्षित कोटा में मिला था। दीदी हमेशा कहती थी, ये पंडे पुजारी बड़े ही दोगले होते हैं, जिस दिन भी उसे तेरी जाति का पता चलेगा दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। हालांकि मुझे यकीन था कि आदित्य ऐसा लड़का नहीं था, मगर वक्त की धार किसने देखी। अगर वो कभी भी दुनिया के बहकावे में आ जाता तो मैं तो कहीं की भी ना रहती। मैंने उसे फोन करके सारी बात बताई और कहा कि मैं पापा का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ, तुम मुझे भूल जाओ हमेशा के लिए, समझो मैं मर गई। मुझे लगा कि वो कहेगा तुम्हारे लिए मैं सारी उम्र कुंवारा रहूंगा। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा।
ऐसा कैसे हो सकता है, तुम उनकी बेटी हो, प्रॉपर्टी नहीं। नहीं मानते तो ना माने, हम उनके बिना शादी करेंगे।
उनके बिना? अभी तो शादी भी नहीं हुई। तुम पहले से ही मुझे अपने परिवार से अलग करना चाहते हो। मुझे उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नहीं, मैं उनकी और इंसल्ट नहीं कर सकती। शायद मैं बहुत कमजोर थी, या शायद मैं दीदी भैया की तरह स्वार्थी नहीं होना चाहती थी। कारण जो भी हो, मैं उसी समय यह समझ गई कि मैं अपने परिवारजनों को नाराज नहीं कर पाऊंगी। शायद हमारा साथ बस यहाँ तक ही था, आज से हमारा रिश्ता खत्म, मैंने जैसे तैसे कह दिया। मुझे लगा वो झगड़ा करेगा, मुझे बुरा भला कहेगा, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने चुपचाप फोन रख दिया। उस दिन के बाद मैंने जब भी उसका नंबर मिलाने की कोशिश की, उसने फोन कभी उठाया ही नहीं। 2 हफ्ते बाद हम सुनीता के घर में मिले। उसने बताया कि उसने नौसेना की नौकरी स्वीकार कर ली थी और वो उस दिन ही मुंबई जा रहा था। चिट्ठी लिखोगे ना?
नहीं।
क्यों?
इतनी तो लिखी, कभी किसी का जवाब तक नहीं आया, और फिर अब चिट्ठी लिखने की कोई वजह भी तो नहीं बची है।
वो सच ही तो कह रहा था, मैंने कभी भी उसके पत्र का जवाब नहीं दिया। सोचती थी कि वो कभी भी बुरा नहीं मानेगा। उस दिन मैं सारी रात रोती रही। दीदी मुझे दिलासा देते हुए हमेशा कहती थी, अच्छा ही हुआ उसका ये पलायनवादी रूप शादी से पहले ही दिख गया। शादी के बाद तुझे अकेला छोड़कर चल देता तो क्या करती। भाभी ने भी समझाया, सच्चा प्यार करने वाले इस तरह मझधार में छोड़कर नहीं चल देते हैं। किताबों में, किस्से कहानियों में भी हमेशा ऐसा ही पढ़ा था। मैं उसके जाने पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मुझे उस पर अपने से भी ज्यादा विश्वास था। मुझे लगता था कि मैं चाहे कुछ भी करूं, वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। वो दिन और आज का दिन, वो मेरी जिंदगी से ऐसा गया कि फिर बहुत कोशिश करने पर भी पता ही न चला कि वो कहाँ है, कैसा है और किस हाल में है। मैंने भी धीरे धीरे जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार कर लिया। कभी किसी को यह एहसास नहीं होने दिया कि मेरे दिल के किसी कोने में वो आज भी रहता है, हंसता है और कविता भी करता है। रणवीर के साथ मेरी शादी पापा के आशीर्वाद से हुई। कोई भी सहेली मेरी शादी में नहीं आई। सबको यही लगता था कि मैंने आदित्य के साथ अन्याय किया है। किसी को भी मेरे दिल का हाल जानने की फुर्सत न थी। मुझे यकीन था कि वो तो आएगा ही, अरविंद के द्वारा मेरी खबर तो उस तक पहुंचती ही होगी, ये मुझे मालूम था, मगर वो भी ना आया। उसकी तरफ से बस एक बधाई तार आया, बाद में भी उसकी कोई खबर न मिली। और कुछ नहीं तो आकर गुस्सा तो कर सकता था, मगर उसने गुस्सा भी नहीं किया और ना ही कोई शिकवा। चुपचाप मेरी जिंदगी से चला गया। शादी के 2 साल बाद करिश्मा पैदा हुई। दिन, मास और फिर वर्ष बीतते गए। करिश्मा स्कूल भी जाने लगी। पुराने मित्रों में सिर्फ अरविंद से कभी कदार बस स्टॉप पर मुलाकात हो जाती थी। बाद में ऐसी ही किसी एक मुलाकात में अरविंद ने एक बार बताया कि आदित्य ने निशा से शादी कर ली। आदित्य और निशा, इससे ज्यादा बेमेल रिश्ता मैंने सुना ना था। कहां आदित्य जैसा देवता आदमी और कहां नंबर एक की बदतमीज और नकचढ़ी निशा। बदतमीज क्यों ना होती, चौधरी सुच्चा सिंह की बेटी जो ठहरी। चौधरी सुच्चा सिंह हमारी बिरादरी के सबसे नामी गिरामी आदमी थे। बड़े बड़े नेताओं से उठना बैठना था। वजह यह थी कि सारी बिरादरी के वोट उनके इशारे पर ही चलते थे। उनके प्रयासों से ही हम लोगों को आरक्षण मिला था। खानदानी पैसे वाले थे, सारा परिवार पढ़ा लिखा भी था। कहते हैं कि भगवान सारे सुख किसी को भी नहीं देता है, बस उनके बच्चे ही खराब निकले। बड़ा बेटा गुंडागर्दी में पड़ गया। कॉलेज के दिनों में ही किसी हत्याकांड में भी उसका नाम आया था। उसके दोस्तों को सजा भी हुई थी, मगर कहते हैं कि चौधरी ने अपने रसूख के बल पर उसको साफ बचा लिया था। मुकदमे के दौरान ही उसे पढ़ने के बहाने इंग्लैंड भिजवा दिया था, अब तो वापस आने से रहा। आदित्य के दादाजी चौधरी के परिवार के ज्योतिषी थे। चौधरी उनको बहुत मानते थे और कहते थे कि उनकी वजह से ये परिवार हमेशा चमका और कितना भी बुरा वक्त आने पर कभी संकट में नहीं पड़ा। निशा का बचपन से ही आदित्य के घर आना जाना था। आदित्य को भी उसके घर में सभी पसंद करते थे और निशा भी हमेशा से किसी फौजी अफसर से ही शादी करना चाहती थी। फिर भी इस शादी पर मुझे बहुत अचंभा हुआ। निशा ने وہ خزانہ پا لیا تھا جو میرے ہاتھ سے پھسل چکا تھا. مجھے نشا سے رشک ہونے لگا. نشا نے ضرور پچھلے جنم میں کوئی تپسیا کی ہوگی. اس رات بھی مجھے نیند نہیں آئی. وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی.
آنکھ سے یہ موتی کیوں گرا؟ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہو؟
اس نے بنا کسی دردتا سے مجھ سے پوچھا. پہلے بھی اس کی ہر بات بنا کسی درد بندھن کے ہی ہوتی تھی. مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ پر اپنا ادھیکار جتائے. اگر میں اس کی بات کا جواب نہ دوں تو وہ ضد کر کے مجھ سے دوبارہ پوچھے. اگر کبھی وہ مجھ پر غصہ بھی کرتا تو شاید مجھے اچھا ہی لگتا. مگر میری یہ اچھا کبھی پوری نہیں ہوئی. اس نے کبھی بھی کسی بات کی ضد نہیں کی. نہ تو ضد کر کے اپنی کسی سوال کا جواب مانگا اور نہ ہی کبھی مجھ پر غصہ ہوا. تب میں نے اس کے ویکتتو کے اس انگ کو کبھی نہیں سراہا. آج اتنے سال بعد پہلی بار میں نے اس کے ویوہار کے اس بڑپن کو سمجھا. پہلی بار اپنے آپ کو اس کی برابری کا پریپک پایا. کیا رڑبیر کی تانا شاہی میں رہنے کے کارن ہی میں ایسا سمجھ رہی ہوں یا پھر میری عمر نے مجھے وکسیت کیا ہے؟ جو بھی ہو اتنا سچ ہے کہ وہ آج بھی ہمیشہ جیسا تھا. تم اتنے دن سے ملے کیوں نہیں مجھ سے؟ اتنے سال تک میری کوئی خبر کیوں نہیں لی؟ کیا کبھی بھی دلی آنا نہیں ہوتا ہے؟ لاکھ کوشش کرنے پر بھی میں شکوا کیے بنا نہ رہ سکی. چٹھی نہ صحیح, فون تو کر سکتے تھے کبھی. وہ شانتی سے سنتا رہا. میری یاد نہیں آئی کبھی. میں بولتی رہی.
یادیں کہاں چھوٹتی ہیں؟ ملا نہیں تو کیا, تمہاری ایک ایک بات آج بھی یاد ہے مجھے.
شادی کے بعد اپنی مرضی کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. اور کیا کہوں, تم تو خود ہی سمجھدار ہو.
اس نے صفائی سی دی. نہیں, میں تو بدھو ہوں اور یہ بات میں ثابت کر چکی ہوں رڑویر سے شادی کر کے.
مگر تم نے تو اپنی مرضی سے شادی کی تھی.
وہ میرا بچپنا تھا. مجھے رڑویر سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی.
تو کیا رتک روشن سے؟
وہ مسکرایا بھی.
اسی کی فین تھی نا تم.
کتنے برس بعد وہ نشچل مسکان دیکھنے کو ملی. میں اپنی خوشی کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتی. نہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پرفیکٹ میچ کے سامنے.
کون ہے وہ خوش نصیب؟ ہم بھی تو سنیں ذرا.
وہ شرارت سے مسکرایا. تم اور کون؟ میں نے جھوٹ پوٹ غصہ دکھاتے ہوئے کہا. میرے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہو؟ میں نے تمہیں نہیں پہچانا. بہت بڑی غلطی کی. اسی کی سزا آج تک بھگت رہی ہوں.
ایسا مت کہو پریتی.
اس کی مسکان ایک دم سے غائب ہو گئی. ایک گہرا وشاد سا اس کے چہرے پر اتر آیا. میں نے کبھی بھی اسے اتنا اداس نہیں دیکھا تھا. میں تو یہ جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کبھی اداس بھی دکھ سکتا ہے. مجھے سچ مچ سمجھ نہیں آیا کہ وہ میری بات سے آہت کیوں ہوا. میں نے تو اس کی تعریف ہی کی تھی. نشا کتنی خوش نصیب ہے جو اسے تم جیسا پتی ملا. میں اپنی ہی رو میں بولی.
پریتی پلیز ایسا بالکل مت کہو. یہ سچ نہیں ہے.
وہ ایسے بولا مانو بہت پیڑا میں ہو. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اتنا اسہج کیوں ہو رہا تھا. کاش میں نشا کی جگہ ہوتی. میرے منہ سے نکلا ہی تھا. میں کبھی اپنی قسمت سے لڑنے کی ہمت نہیں جٹا سکی, ورنہ ہماری دنیا کچھ الگ ہی ہوتی.
تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ خوش رہتی؟
وہ ایک پل کو ٹھٹکا, پھر بولا.
تم سوچتی ہو نشا میرے ساتھ بہت خوش ہے.
میں سمجھی نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا. وہ کچھ الجھی الجھی باتیں کر رہا تھا.
بالکل بھی خوش نہیں تھی وہ میرے ساتھ. یا تو جھگڑا کرتی تھی یا دن رات روتی تھی. میں نے ایک آدھ بار منوچکتسک کے پاس جانے کی بھی بات کی تو وہ اور سارا چودھری پریوار میرے خلاف بھڑک گیا کہ میں ان کی بیٹی کو پاگل کر دینا چاہتا ہوں.
میں اس کے چہرے کی پیڑا کو اسپشٹ دیکھ پا رہی تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کا کیا کروں.
پریتی یہ دنیا بہت کٹھن ہے. صحیح غلط, اچھے برے کو پہچاننا آسان نہیں ہے. ہمیں صرف اپنے گھاؤ دیکھتے ہیں. سندر سندر کپڑوں کے نیچے دوسرے لوگ کتنے گھاؤ لے کر جی رہے ہیں اس کا ہمیں قطعی احساس نہیں ہے. اس لیے ہمیں دوسروں سے ایرشیا ہوتی ہے. سچ تو یہ ہے کہ اپنے سارے گھاؤں کے باوجود ہم دوسروں سے زیادہ خوش نصیب ہو سکتے ہیں، مگر ہمیں اس بات کا ذرا بھی انداز نہیں ہوتا ہے۔
میں اس کی بات دھیان سے سن رہی تھی۔
سکھ دکھ دونوں ہمارے اندر ہی ہیں۔
مجھے اس کی بات کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔
پتا ہے ہماری سمسیا کیا ہے؟
اس نے بہت پیار سے کہا، مانو کسی بچے کو سمجھا رہا ہو۔
جھوٹی امیدوں میں پھنس کر ہم سچی خوشیوں کو درکنار کرتے رہتے ہیں۔ اپورنتا جیون کی کمی نہیں بلکہ اس کا اصلی مطلب ہے۔ جیون ایک کھوج ہے، ایک سفر ہے، جیون منزل نہیں ہے۔ یہی جیون کی سندرتا ہے۔ موت سمپورن ہو سکتی ہے، پرنتو جیون ادھورا ہی ہوتا ہے۔ آدھا ادھورا جو بھی ملے اسے اپنانا سیکھنا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ہمیں بڑا بناتی ہیں، جبکہ بڑی بڑی امیدیں ہمیں چھوٹا کر دیتی ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر تمہاری شادی رنویر سے نہ ہوئی ہوتی تو تمہیں کرشمہ نہیں ملتی۔ اپنے سوبھاگیہ کو پہچانو، تبھی خوشی ملے گی۔
نشا ساتھ میں آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ سوچتی تھی کہ شاید میں اسے احساس دلا پاؤں کہ وہ کس ہیرے کی بے قدری کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی اداس مسکان کوندھی اور وہ کچھ شبد ڈھونڈتا سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔
نشا نے یہ شادی صرف اپنے ماتا پتا سے ودروہ کرنے کے لیے کی تھی۔ اس نے کئی بار پولیس بلائی تھی مجھ پر پرتاڑنا کا آروپ لگا کر۔ میں دہیز ویرودھی ایکٹ میں جیل بھی گیا۔ کچھ تو پولیس ریکارڈ کی وجہ سے اور کافی کچھ سسر جی کے پربھاؤ کی وجہ سے نوسینا نے بھی ڈس آنریبل ڈسچارج دے کر نکالنے کی کوشش کی، مگر بعد میں آروپ ثابت نہیں ہو پائے اور آخر کار مجھے بحال کیا گیا۔ آج اسی سلسلے میں مکھیالے آیا تھا۔
ہے بھگوان، کب ہوا تھا یہ سب؟ مجھے نشا پر بے حساب غصہ آ رہا تھا۔
کچھ سال پہلے،
اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مانو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
اب تو ہمارا طلاق ہوئے بھی ایک سال ہو گیا ہے۔
ہم سونا روپا کے سامنے کھڑے تھے، میری بھوک مر چکی تھی۔
ہندی کو انٹرنیٹ کی بھاشا بنانے اور کلا کی ہر ودھا سے جوڑنے کا ہم نے اٹھایا ہے بیڑا۔ کیا آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ آج ہی لاگ آن کریں www.hindyugm.com۔ ہند یوگ، یوا امیدوں اور پرتیبھاؤں کا ہندوستانی منچ۔